सातवां स्कंद अध्याय चार, हिरण्यकश्यपु पूरे विश्व में अत्याचार किया। हिंदी की किताब कहाँ है? और श्लोक संख्या 37, न्यस्ता किरणको बालो जड़वत तन्मनस मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगद ईदृशाम। संदीपनी, व्हाट इज रॉन्ग इन साउंड सिस्टम? इधर माइक इज नॉट सेट अकॉर्डिंग टू मशीन और मशीन इज नॉट सेट अकॉर्डिंग टू माइक। जोड़ पड़ रहा है, चले जाओ पीछे। चलो हिंदी बोलने वाले आगे आ जाओ, बार बार बोलना पड़ेगा क्या? चलो उधव माधव कौन, चलो जाओ। न्यस्त किरणन को बालो जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदिश्रितम् न वेद जगद ईदृशम् न्यस्त किरणन को बालो जड़वत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीश न वेद जगद ईदृश न्यस्त किरणन को बालो जड़वत्तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्। माता जी
Nyasta.
त्याग करके क्रीड़नका सभी प्रकार के खेल कूद या बचपन में खेल की प्रवृत्ति बाला बालक जड़वत आलसी के तरह बिना किसी गतिविधि के तत्मनस्तया कृष्ण में पूर्णतया लीन होने से कृष्ण ग्रह कृष्ण के द्वारा जो कि प्रभव प्रभाव के तुल्य जो कि प्रबल प्रभाव के तुल्य या ग्रह के समान है गृहीत आत्मा गृहतात्मा जिनका मन पूर्णतया आकृष्ट है ना नहीं वेद समझ पाया जगत संपूर्ण भौतिक जगत ईदृशा इस तरह का अपने बाल्यकाल के आरंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निस्संदेह उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होकर शांत था जड़ बने रहते थे। चूंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था अतएव वे यह नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। तात्पर्य प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति के ज्वलंत उदाहरण हैं जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया निमग्न रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.274 में कहा गया है अस्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्मृति। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखता। यही महाभागवत का लक्षण है। महाभागवत सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है क्योंकि कृष्ण के लिए उसमें शुद्ध प्रेम रहता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.38 में पुष्टि की गई है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ती यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदा देखे जाते हैं जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्मा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रह का प्रभाव होता है तो वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे अतएव वे भौतिक जगत के विषय में न तो सोच सकते थे न कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित रह सकते थे। यही महाभागवत का लक्षण है। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों न हो महाभागवत उसे भी कृष्ण के सेवा में संलग्न करता है। एक अन्य एक सीधा सा उदाहरण यह है कि पीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है, इसी प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण के सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभागवत अर्थात परम भक्त हैं। पिछले श्लोक में बताया गया है कि उनके स्वभावी अनुरक्ति थी नैसर्गिक रति। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति ऐसी नैसर्गिक रति के लक्षण वर्णित हैं। यद्यपि प्रहलाद महाराज अभी बच्चे थे किंतु वो खेलने में कोई रुचि न थी, जैसा कि भागवत 11:42 में कहा गया है, विरक्ति अन्यत्र च। पूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण है कि मनुष्य सारे भौतिक कार्यकलाप में कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावनामृत की समाधि में लीन रहते थे। जिस प्रकार एक भौतिकवादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता है, उसी तरह प्रहलाद जैसा महाभागवत सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयैमा पुरो विभो निरमायसे ते यदमूषु पुरुषं भुक्ते गुणांषोडशषोडशात्मकं शोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे व्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण पता नहीं मेरे गला में लग रहा है कुछ साउंड कुछ गड़बड़ी है। तो यहां पर एक महाभागवत दूसरे महाभागवत के विषय में तीसरे महाभागवत से कथा कह रहे हैं। नारद जी एक महाभागवत हैं जो प्रहलाद महाराज दूसरे महाभागवत के विषय में, युधिष्ठिर महाराज तीसरे महाभागवत से कथा कह रहे हैं। तो ये महाभागवत की कथा है। महाभागवत ऐसे कोई नहीं बन जाता है,
मुफ्त में नहीं डिग्री मिलती है माँ भागवत की, इसके लिए बहुत घास काटने पड़ते हैं, बहुत काम करने पड़ते हैं, तब माँ भागवत की उपाधि मिलती है। माँ भागवत का परिभाषा इस श्लोकों में दिया गया है। नारद मुनि बतलाए हैं कि माँ भागवत के लक्षण कैसे होते हैं। लक्षण जो होता है वह वस्तु के को बतलाता है। जैसे बुखार होता है, बुखार दिखाई नहीं पड़ता है, आजकल डेंगू हो रहा है ना, तो डेंगू दिखाई नहीं पड़ता है कि उसके लक्षण पता चलता है, शरीर टूटने लगता है, शरीर में दर्द होता है, कई एक लक्षण है। तो हरि बोल प्रभु, कैन यू पुट लिटिल डाउन, कुछ सुई सुई आवाज आ रहा है जो कि इरिटेट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो लक्षण से वस्तु को हम पहचानते हैं। दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक कहलाता है तटस्थ लक्षण और दूसरा कहलाता है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन स्वरूप लक्षण में परिवर्तन नहीं होता है। पुट इट मोर डाउन, वो आवाज नहीं आ जाए, सूं सूं जो आ रहा है ना, बड़ा भयावह आवाज होता है, अंधेरी रात में सूं सूं कुछ आवाज आए तो ये जो लक्षण यहां पर बताए जा रहे हैं नारद जी के द्वारा, ये महाभागवत के स्वरूप लक्षण का वर्णन किया गया है। स्वरूप लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो पार्टिकुलर श्लोक है, इस श्लोक में महाभागवत के स्वरूप लक्षण का वर्णन किया गया है कि वे लोग संसारी क्रियाकलापों में रुचि नहीं रखते हैं। उनकी रुचि जो है वो एकमात्र कृष्ण में बनी रहती है। यही है स्वरूप लक्षण महाभागवतों का। प्रहलाद महाराज की कथा हो रही है, हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर के राज दरबार में नारद जी कथा कह रहे हैं। वहां पर बहुत से लोग एकत्रित थे, राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था उस समय की यह वार्तालाप है, उस समय का बात है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था कि प्रहलाद, सामान्यतः पुत्र अपने पिता के बड़े प्रेमी होते हैं, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन कौन सा ऐसा बात हो गया कि प्रहलाद, सामान्य बाप भी अपने पिता से बैर नहीं करता है। देखिए द्वापर का बात था, कलयुग में तो दूसरा बात है, पैसा के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस समय का बात था। तो कहते हैं कौन सा ऐसा बात, उसमें ही प्रहलाद जैसे महाभागवत महान वैष्णव से बैर ठानने का क्या कारण था, यही प्रश्न था। और उन्हीं प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी अब प्रहलाद महाराज के का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के कुछ गुणों में से एक गुण यहां पर बतलाए हैं। इसके पहले का जो श्लोक है उसमें कहते हैं, गुणै अलम असंख्य महात्मनम तस्य सुच्यते। इनके जो गुण है प्रहलाद महाराज के, उनकी महानता का वो असंख्य गुण है, है? कहते असंख्य, जो असंख्य है उसका सूची बनाना मुश्किल है। कहते वासुदेवे भगवती यश नय सर्ग की रति। प्रहलाद महाराज कि भगवान कृष्ण के चरणों में नए स्वर्ग की आसक्ति थी बनाने जाए। श्री श्री गौर निताय राधारस बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जाए। उन्हें रति उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं थी, उनमें नेचुरल फ्लो था। कहते हैं प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, ऐसा कहते हैं ना। तो प्रहलाद महाराज को प्यार हो गया था कृष्ण से। हम लोग प्यार करने का प्रयास कर रहे हैं साधना भक्ति के द्वारा, रति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। आदौ सदा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा, ऐसे ऐसे क्रमशः। लेकिन उनकी जो निष्ठा थी प्रहलाद महाराज की, सुखदेव गोस्वामी यहां पर कहते हैं नए स्वर्ग की रति थी, जन्मजात वह रति थी, वासुदेव भगवती। भगवान वासुदेव में उनकी निष्ठा जन्मजात थी, यानी जन्म से ही थी, यानी वे भक्त बाद में नहीं बने, जन्म लेते भक्त ही थे। तो भक्त को क्या करना चाहिए उसका वर्णन यहां पर किया गया है कि भक्तों के लिए करणीय कार्य क्या है, यहां पर इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो पहला बात कहते हैं कि जन्म लिए तो बालक थे। बालक जो होते हैं उनकी आसक्ति होती है, उनकी रति होती है क्रीड़ा में। बाल्यकाल फ्री लाइफ है, नो टेंशन, टेंशन फ्री लाइफ। तो क्रीड़ा करते हैं बालक लोग, खेलते हैं, हम लोग भी खेले हैं। बाल्यावस्था क्रीड़ा आसक्ता, तरुणावस्था तरुणी आसक्ता। तो बाल्यकाल जो है बच्चे लोग क्रीड़ा में आसक्त रहते थे। पहले का क्रीड़ा आजकल के क्रीड़ा से बहुत अच्छा था। पहले कम से कम फिजिकल होता था, जाते थे फुटबॉल खेलने के लिए, गुल्ली डंडा खेलते थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप। आजकल क्रीड़ा करने का, क्रीड़ा खेलने का मजा आता है बरसात के समय में ना, थोड़ा पृथ्वी थोड़ा नर्म होता है, मतलब कि मिट्टी होता है, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ये सब क्रीड़ा था। नदी में डाइविंग करते हैं, कूदते हैं, चोर और सिपाही का खेल खेलते हैं, पेड़ पर चढ़े दूसरा फेंको पकड़ कर लाओ, ऐसे करते थे। दुख की बात है कि आजकल के बच्चे केवल देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन खेलते नहीं हैं। आजकल के बच्चे आईपैड पर खेलते हैं, ये मेंटल क्रीड़ा है, फिजिकल क्रीड़ा नहीं। पहले के बच्चे जंप करना होगा तो जंप करेंगे यहां से वहां तक, आजकल गिर जाए तो रोना शुरू करेंगे, शक्ति नहीं रह गई है। फर्स्ट फ्लोर से कूद जाएंगे हाथ पर नहीं टूटेगा, आजकल के बच्चे बेड से नीचे गिरते हाथ पर टूट जाएगा। तो फिजिकल क्रीड़ा आजकल नहीं रह गया है, मेंटल, वो पकड़ करके घूमते रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो आजकल एक क्रीड़ा हो गया, नहीं तो कार्टून वॉच करेंगे, अपने नहीं खेलेंगे, दूसरा खेल रहा है उसको अच्छा उनको लगता है। पहले के बच्चे लोग ऐसा नहीं, पहले स्वयं खेलते थे, भगवान कृष्ण भी खेले, चैतन्य महाप्रभु खेले। तो बच्चों का ये था कि बाल्यावस्था क्रीड़ा आसक्ता, क्रीड़ा में आसक्त होने का समय होता है बालक अवस्था। लेकिन प्रहलाद महाराज एक विशेष प्रकार के भक्त थे, वे भी आसक्त थे, ऐसा बात नहीं आसक्त नहीं थे, लेकिन जगत यानी संसारिक क्रीड़ा इत्यादि में आसक्त नहीं थे। न्यस्त क्रीड़ा को बालो, जड़वत तन मनस्तया, उनका मन संसारिक क्रीड़ा में लगता ही नहीं था, जड़वत हो जाता था। जब तक से किसी वस्तु में अनुराग न हो तो करने का मन नहीं करता है, जब तक से भूख न हो तो खाने का मन नहीं करता है। तो अनुराग होना जरूरी है। तो संसारिक कार्यकलाप या क्रीड़ा में प्रहलाद महाराज का मन बिल्कुल नहीं था। यहां ये बालो शब्द कहा गया है, बाल का अर्थ ही होता है टेंडर, सॉफ्ट, वह खेल का ही समय होता है। बाल, बालक, बालकाल, बाल्यावस्था, ये सब खेल का समय होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज का मन उनमें नहीं लगता था। जब मन नहीं लगा शरीर कहां से लगेगा, जब मन लगेगा तब शरीर लगेगा। उनका मन कहां पर लगा था, कृष्ण ग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना, जैसे ग्रह पकड़ने वाला, तो ग्रह मतलब पकड़ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में तो कहते हैं कि कभी कभी ग्रह लग जाता है, शनि ग्रह कहते हैं ना, तो शनि ग्रह चढ़ गया है। जब शनि ग्रह चढ़ गया तब उसका कंट्रोलर कौन हो गया है, शनि हो गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यहां पर कि यदि किसी व्यक्ति पर शनि, राहु अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि वो संचालित होता है उन ग्रहों की तरह, पकड़ लिया गया है, और जैसे वे ग्रह चलाएंगे वैसे वो चलेगा। प्रहलाद महाराज भी पकड़ लिए गए थे, लेकिन किसके द्वारा पकड़ लिए गए थे, कृष्ण ग्रह, कृष्ण उनको पकड़ लिए थे। हम लोग कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को कृष्ण के को पकड़ने का तब तक प्रयास करना चाहिए तब तक जब तक वो पकड़ न ले। वो पकड़ते नहीं हैं, लेकिन एक बार यदि पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोगों को अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रयास में विभिन्न प्रकार के विघ्न बाधाएं आएंगे, लेकिन यदि अपना लक्ष्य क्लियर रहेगा कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, यदि लक्ष्य क्लियर रहेगा तो कृष्ण जरूर हमें पकड़ेंगे। कृष्ण का एक नाम है नंदन, न द न, जो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं ही देते हैं, सब कुछ दे देंगे कृष्ण, जो चाहिए धनम दे ही, जन्म दे ही, सब दे देंगे, लेकिन अपने को नहीं देंगे। बंधुआ बनना पड़ता है ना, कोई बंधुआ नहीं बनना चाहता है। यशोदा मैया इतनी महान भक्त थी, वो भी कृष्ण को बांधने के लिए दिन भर लग गया, मैया को दिन भर दौड़ती रही रहती लेकर बांधने के लिए, कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, लेकिन पकड़ नहीं पाई कृष्ण को। लेकिन मैया भी ठान ली थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं बिना कृष्ण को पकड़े छोड़ूंगी नहीं, मैं कृष्ण को जरूर पकड़ूंगी। सब गोपियां कह रही थी कि मैया छोड़ दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, शाम को आ जाएगा, मान जाएगा, कोई बात नहीं, आप मत पकड़िए, नहीं आज बिना पकड़े नहीं छोड़ूंगी। पूरा शरीर मैया का पसीना से लथपथ हो रहा था, लेकिन फिर भी हाफाई हाफ रही थी, लेकिन फिर भी दौड़ रही थी कृष्ण को पकड़ने के लिए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं जो कि कृष्ण को पकड़ने नहीं देती, चाहती थी। बड़े बड़े जोगी मुनि, जोगी भी अगम्य, कृष्ण को जानना उनके लिए भी कठिन होता है। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, कृष्ण को पकड़ने नहीं देती है, लेकिन भगवान की एक स्पेशल शक्ति है जिसका नाम है कृपा शक्ति। जब कृपा शक्ति किसी पर कृपा कर दे तो व्यक्ति कृष्ण को पकड़ सकता है। तो भागवतम में वृणा यशोदा मैया जब पकड़ना चाहती थी कृपया आविष्ट, कृपा शक्ति के द्वारा भगवान आविष्ट हो गए, पकड़े गए कृपा शक्ति। तो हमें जो भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं भगवान के कृपा शक्ति का अटेंशन प्राप्त करने के लिए, ये जो साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, प्रत्येक दिन सुबह मंगला आरती आना, क्लास आना, गुरु पूजा आना, 16 माला जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, गीता प्रवचन सुनना, संध्या आरती में नाचना गाना, ये सब जो है वो कृपा शक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए है। और जब एक बार कृपा शक्ति से हम शक्तिमान हो जाएंगे तो कृपा शक्ति के कृपा से कृष्ण हमको पकड़ लेंगे। कृपा शक्ति ही एक महा साधन है जिससे कृष्ण हमें पकड़ लेते हैं। सब कुछ दे देंगे अपने को नहीं देंगे, एक बार दे देते हैं अपने को, हमें पकड़ लेते हैं कृष्ण। एक उदाहरण दिया गया है ना कि एक बार एक बाप था और बेटा, दोनों नदी को पार कर रहे थे लेकिन वहां पर बंबू का ब्रिज था, तो बाप ने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, तो बेटा ने कहा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो। तो बाप को बड़ा गुस्सा है, बदमाश कहें क्या छोटा बच्चा है, बड़ा मुंह बात करता है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। तो बाप का गुमान था कि मैं बड़ा आदमी हूं, कहा तुम्हारा हाथ क्या पकड़ू मैं, कहा पिताजी यदि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और पैर फिसल गया तो मैं गया काम से, लेकिन आप यदि मेरा हाथ पकड़ रहोगे और मेरा पैर फिसल जाएगा तो आप मुझे टांग लोगे। बात सही कहा बच्चा ना। तो हम लोगों को अपना हाथ भगवान के हाथ में देना है। तो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण ग्रह, कृष्ण ग्रह रूपी, वह ग्रह, कृष्ण ग्रह रूपी ग्रह से हमको अपने को पकड़वाना है, कृष्ण हमें पकड़ लें। और कृष्ण को पकड़, कृष्ण कैसे पकड़ते हैं, कृपा शक्ति के द्वारा। और कृपा शक्ति प्राप्त होती है जब हम महाभागवतों का आदेश पालन करें। श्रील प्रभुपाद जी महाभागवत हैं, उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया है, जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो, जस्या प्रसादाद नगति कुतोपि। जब भगवान की कृपा होती है तब, जब गुरु कृपा होती है तब भगवान कृपा होती है। मैं सोचा था कुछ पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा चीज था, भगवान चैतन्य महाप्रभु और रघुपति उपाध्याय के बीच में कुछ वार्तालाप हुई थी, उस सेक्शन में सोच रहा था पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज कोई सामान्य भक्त नहीं है, इसमें से कुछ गुण हम लोग इस श्लोक से देखते हैं कि उनको संसार के क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं थी। दूसरा, उसके प्रति वे जड़वत थे। एक तो रुचि न होना, तो कोई कहता नहीं बाद में रुचि हो भी सकती है, कोई उसका इंपॉर्टेंस बताएगा, शुरू शुरू में रुचि नहीं हुई। जैसे पहले लोग किसी को बीड़ी पीना सिखाना चाहते थे या सिगरेट पीना, तो पहले पिएगा तो उसको खांसी आएगा, अच्छा नहीं लगता है। अरे कोई बात नहीं, पीते रहो, पीते पीते मन लग जाएगा। या शराब पीने वाला इसे सिखा बहुत, गुरु सब जगह हैं, शराब पीने का सिखाने वाले भी गुरु लोग हैं, सिगरेट पिलाने वाले भी गुरु लोग हैं। तो पीते पीते आदत पड़ जाएगी, तो उनकी आसक्ति नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि हो जाए बाद में। तो उसको क्लियर कहते हैं, बालक का स्वभाव है, बालक लोग हमेशा के लिए किसी वस्तु से विरक्त नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए, फिर बाद में आसक्ति हो जाती है। विरक्ति कुछ समय के लिए होती है, जैसे फटा कपड़ा पहना है बच्चा, बाप माँ से देखता है कि फटा आ गया, बेटा छोड़ दो इसको, क्या नहीं मुझे अच्छा लगता है, फटा हुआ है अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो छोड़ भी सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाल का स्वरूप है क्रीड़ा करना, लेकिन क्रीड़ा नहीं करना ये स्वभाव के विपरीत है, स्वभाव के विपरीत है क्रीड़ा न करना। तब उसको पूरक कहते हैं, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं थे, वे जड़वत थे, मनस्तया, मन क्रीड़ा के प्रति कोई आदर भाव नहीं रखता था। क्यों, कारण क्या है, तो कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा वे गृहित हो गए थे, जैसे गजराज को ग्रह ने ग्रसित कर लिया था, या चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित कर लेते हैं, तो वैसे ही कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद महाराज को ग्रसित कर लिया था, जिसके चलते न वेद जगत ईदृशम, तो फिर जगत और जगत के कार्यकलापों में उन्हें कोई रुचि नहीं थी, जगत के प्रति वो पीठ दुखा चुके थे प्रहलाद महाराज। तो ये प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन यहां पर किया गया है। ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जिसको कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं, जिसे कृष्ण पकड़ लेते हैं, वह व्यक्ति संसार का कोई वस्तु उसे रुचिकर नहीं लगता है। तो रूप गोस्वामी पद्यावली में बतलाए हैं, कहते हैं प्रहलाद नारद परास पुंडरिकम व्यासम वृषम सुक सौनक भीष्म दाल्यवान रुक्मांग उद्धव विभीषण फाल्गुनादिना पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। ये कुछ परम भागवतों को सुखदेव गोस्वामी प्रणाम किए हैं, उसमें से कहते हैं प्रहलाद, प्रहलाद जी पहला नाम है प्रहलाद, दूसरे हैं उनके गुरु जी नारद, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरिक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्म दालभ्य रुक्मांगद उद्धव विभीषण अर्जुन प्रवृत्ति इस पुण्यात्मा परम भागवतों को नमस्कार करता हूं। नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज का ये आता है कि प्रहलाद महाराज स्मरण कर करके भगवान का, भगवान को प्राप्त किए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत व्यास की कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्री भयते लक्ष्मी पृथु पूजने। भगवान विष्णु के संबंध में, कृष्ण के संबंध में श्रवण कर करके परीक्षित जी इस धराधाम को पार किए। सुखदेव गोस्वामी कथा कह कर करके, प्रहलाद जी श्रवण कर कर करके, तो श्रवण कर करके कोई भी भक्ति का अंग है, यदि हम उसे अपनाएं तो हम पार कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज स्मरण कर करके नित्य निरंतर कृष्ण का स्मरण करते थे, यानी उनका मन कृष्ण में लगा होता था, इसलिए अन्यत्र कहीं मन लगता ही नहीं था, अन्यत्र कहीं मन नहीं लगता था। जो कृष्ण रोग से रोगी हो जाता है उसे सर्वत्र कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के इस मतलब तात्पर्य मतलाए हैं वो पीलिया रोग का है? कहते हैं एक अन्य एक सीधा सा उदाहरण यह है कि पीलिया ग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है, उसी प्रकार से कृष्ण ग्रहित जो व्यक्ति है उसे सब जगह सब में कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं, और यही कारण है कि वह महाभागवत कहलाता है। महाभागवत वही है जो सर्वत्र कृष्ण का दर्शन करे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जामी ततो नरसिंहा, हृदये नरसिंहा बहिर् नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहा मदिम शरणम प्रपदे। सर्वत्र नरसिंह देव का दर्शन कर रहे थे, तो भगवान का दर्शन कर रहे थे प्रहलाद जी, तो इसलिए ये महाभागवत है। इसी स्कंद के 13वें अध्याय में जब वर्णाश्रम कहां जा रहे हो पीछे क्यों यहां बैठो, परीक्षित महाराज आगे बढ़ कथा सुन रहे थे, ये पीछे जाएगा, पीछे से फिर पीछे से और पीछे चला जाएगा, अब इसका जरूरत नहीं है। सुनो, टेक्नोलॉजी खराब भी करता है कभी कभी। तो महाभागवत जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता रहता है, सबका भगवान से संबंध देखता है, वो महाभागवत है। इसी 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में जब वर्णाश्रम का वर्णन हो रहा था तो प्रहलाद महाराज ही मिले थे दत्तात्रेय जी से, अवधूत से, वहां भी एक महाभागवत दूसरे महाभागवत से मिले, तो पूछ रहे थे उनका दिनचर्या के, आप क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, लगता तो है क्या फकीर हैं लेकिन मोटे ताजे हैं, राजा के समान हैं, है? आपको सप्लाई कौन करता है फूड, कहां से आता है, क्या करते हैं, आपका दिनचर्या क्या है। तो यहां पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं ना हम निंदे न चौस्तभि स्वभाव विषमम जनम एतेषां श्रेय आशासे उत एकात्म महात्मने। कहते हैं कि न अहम निंदे न च अस्तोभि, न तो भाई मैं किसी का निंदा करता हूं और न तो मैं किसी का गुणगान करता हूं। मां भागवत का यही लक्षण है, वो न तो किसी का निंदा करता है और न किसी का वो गुणगान करता है, क्योंकि वह देखता है कि सब लोग कृष्ण में लगे हुए हैं। प्रभुपाद जी भी इस श्लोक के तात्पर्य में बतलाए हैं कि महाभागवत सबको कृष्ण का सेवा करते हुए देखता है। वो शराब पी रहा है तो शराब वो कृष्ण का भक्त ही है, उसको आनंद आ रहा है शराब में, और जो भी आनंद है वो कृष्ण में है। तो जो शराब का आनंद है वो अभी कृष्ण का ही आनंद है। भगवान विभूति जो कवरण जब करते हैं तो कहते हैं कि कहां कहां वे हैं, तो जो भी संसार में आनंद है वो कृष्ण है। रसो हम अब सुकौंते शीतोष्ण रस पानी में जो स्वाद है वो अंगत मैं हूं, प्रभास्मिन सूर्यो सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है मैं हूं। तो शराब में जो आनंद है वो भी भगवान ही है, भगवान का स्वरूप ही है, आनंद स्वरूप सचिदानंद आनंद स्वरूप भगवान है। तो जो महाभागवत हैं वो इस रूप में देखते हैं। तो वही दत्तात्रेय कहते हैं ना हम निंदे मैं किसी का निंदा नहीं करता हूं, न च तो भी न तो मैं किसी का स्तुति करता हूं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? और जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जो सही है सही कहना चाहिए। तो कहते हैं नहीं भाई, स्वभावम विषमम जनम, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का स्वभाव है। एक ही बाप मां के जन्मे दो बच्चे हैं, दोनों का अलग स्वभाव है। स्वभाव विषमम जनम, लोगों का स्वभाव अलग अलग है। तो फिर आप क्या करते हैं? कहते हैं एत एसाम श्रेय आशा से, मेरी एक ही आशा बनी रहती है, मेरी एक ही इच्छा रहती है कि इन सब का कल्याण हो। जो हरे कृष्ण का जप करते हैं उनका भी कल्याण हो, और जो हरे कृष्ण का जप नहीं करते हैं उनका भी कल्याण हो। ए तो एसाम आशा श्रेय आशा से, श्रेय प्रेयस नहीं श्रेयस, अत्यंतिक कल्याण यानी भगवान के धाम में जाए, यही मेरी एकमात्र इच्छा बनी रहती है, यही एक आशा रहती है, यही मेरी इच्छा है, लालसा है। उत एकात्म महात्मने, कि किसी न किसी प्रकार से लोग भगवान से जुड़ जाए, बस यही मेरी एक चाहत है, यही एक आशा है कि किसी न किसी प्रकार से लोग भगवान से जुड़ जाए और उनका कल्याण हो, बस ये है महाभागवत का लक्षण, ये है महाभागवत का गुण। महाभागवत लोग यही चाहते हैं, इसीलिए चूंकि सबको कृष्ण से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए नित्य निरंतर कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का गुणानुवाद, कृष्ण का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी में लगे रहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, लेकिन इस धराधाम पर आकर के एक भक्त का, भक्त रूप स्वरूप कम, भक्त का स्वरूप धारण कर करके आकर के लोगों को भक्ति सिखाए। और भक्ति का पराकाष्ठा जो है वह है कि नित्य निरंतर कृष्ण का चिंतन करें, कीर्तनीय सदा हरि, महाभागवत की पोजीशन पर जाए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से जा रहे थे सॉरी, तो वेरूप गोस्वामी से प्रयाग में मिले, नहीं सॉरी आ रहे थे वृंदावन से, जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर थे दशाश्वमेध घाट पर, तो बहुत लोग उनसे मिलने आते थे। एक तिरहुती ब्राह्मण आए थे एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। मैं सोचा कि वही प्रसंग पढ़ूंगा, बड़ा अच्छा है, इस प्रसंग का मां भागवत के लक्षण से लेना देना है। इसलिए हेना काले आइला रघुपति उपाध्याय, तिरहुती पंडित बड़ा वैष्णव महाशय। जब महाप्रभु प्रयाग में थे तो उस समय एक तिरहुती ब्राह्मण आए जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय, वे एक महान वैष्णव थे, महाप्रभु से मिले। आसिते हो कैल प्रभुर चरण बंदन, कृष्ण मति रहु बलि प्रभुर वचन, कृष्णेर मति रहु बलि प्रभुरे वचन। वो आकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, और भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्णेर मति अस्तु, आपका मन कृष्ण में लगा रहे। सुनि आनंदित हैल उपाध्याय मन, प्रभुतारे कहिल कह कृष्णेर व्रणन। महाप्रभु क्या देखे, देखे कि आ करके मुझे प्रणाम किया बस, और कहे कि तुम्हारा मन कृष्ण में लगा रहे। रघुपति उपाध्याय भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद था, इस आशीर्वाद से आनंदित हुए, और वही पहचान था रघुपति उपाध्याय का कि हैं कौन। भगवान चेतन महाप्रभु का तुम्हारा मन कृष्ण में लगा रहे और इतना सुन करके वे प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार से सुदामा जी जब द्वारका गए, उनकी पत्नी चाहती थी कि कुछ लेकर के आएंगे, कुछ मांग कर लाएंगे। जो चूड़ा दिया था वो भी भगवान खा गए और विदाई में कुछ भी नहीं दिए। जब आ रहे थे सुदामा तो कुछ भी नहीं दिए, लेकिन सुदामा दुखी नहीं हुए कि मेरी पत्नी क्या बोलेगी, जो जलाया था वो भी चला गया, बल्कि वे तो बड़े प्रसन्न थे, आनंदित थे। क्वाहम दरिद्र पापियाम क्वा कृष्ण श्री निकेतन, अरे कहा तो मैं पापी दरिद्र कंगाल ब्राह्मण, और कहा क्वा कृष्ण श्री निकेतन, और कहा रायाधिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण श्री निकेतन, वो हमको अपने बंधु के समान गलवाही दिए। कितना बड़ा सौभाग्य है, रुक्मिणी जी चमर जुला रही थी, भगवान मेरा पाद प्रक्षालन किए, अपने सैया पर मुझे सुलाए, मेरा पाद संवाहन किए, पैर दबाए। ये सब बातों को स्मरण कर करके सुदामा जी बड़े आनंदित हो रहे थे। भक्त का पहचान ऐसे ही है, यदि हम लोग जब भक्त होता 10 गाली देता, बदमाश कहीं का हम गए थे, जो था वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं दिया है? हम लोग क्या क्या नहीं गाली देते, लेकिन सुदामा जी ऐसा नहीं किए। वैसे ही रघुपति उपाध्याय, साधु के पास लोग जाते हैं तो आशीर्वाद समझते हैं कि साधु हाँ फलो फूलो बाल बच्चा पैदा हो करो, आए धन संपत्ति घर आए। ये कहते हैं तुम्हारा मन कृष्ण में लगा रहे, यानी सब जगह से मन छूट जाओ, खत्म हो जाओ, साधु बन जाओ सब जगह से। इसे रघुपति उपाध्याय बड़े खुश हुए, उनका मन आनंदित हो गया, और उनका मन आनंदित हुआ, यह आनंद देख करके भगवान चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो कृष्ण को पाप कर करके जो सुखी होता है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम लोग तो ब्रह्मचार्य आश्रम में निद्रा को प्राप्त करके खुश होते हैं ना, बात है ना, चले मंगला आरती ना आए तो भी चलता है, क्लास गुरु पूजा ना आए संध्या आरती ना चलता है, प्रजल्प पा करके खुश होते हैं, बार प्रजल्प करेंगे बात करेंगे, संध्या आरती में नहीं आएंगे उससे अच्छा लगता है ना। तुमको नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं केवल। तो हमको इसमें आनंद आता है, लेकिन जिसे कृष्ण में आनंद आए, कृष्ण विषयक वार्ता में आनंद आए, कृष्ण के दर्शन में, कृष्ण के लिए नृत्य करने में, कृष्ण कथा सुनने में जिसे आनंद आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त वो हो सकता है, वो कृष्ण कृपा पात्र हो सकता है। तो महाप्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु तारे कहिल कह कृष्णेर वरदान। महाप्रभु ने कहा आशीर्वाद दिए कृष्ण के, कृष्ण का मन, कृष्ण का कृपा तुम पर बना रहे, खुश हो गया। तो महाप्रभु ने कहा, पूछ लिया कि भाई तुम बताओ, तुम कृष्ण के विषय में क्यों आशीर्वाद दिया, तुम्हें आनंद आया तो बताओ। निज कृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़ी ल सुनी महाप्रभु महा प्रेमावेश हैल। तो रघुपति उपाध्याय कृष्ण संबंधी कुछ श्लोक लिखे थे, और श्लोक को जब पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु लगे नाचने, उनको बहुत आनंद आया। वह श्लोक क्या था, कहते हैं संप्रति कथा मत, सॉरी कहते हैं श्रुति मा परे स्मृति तरे भारत भारतम अन्य भजन्तु भवभीता अहम इहम नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्म। कहते श्रुति मा परे स्मृति तरे भारत तम अन्य भजन्ति भवभीता। कुछ लोग शास्त्रों में के अनुसार, कुछ लोग सुन करके भगवान का भजन करते हैं, कुछ शास्त्रों का स्मरण कर शास्त्रों को पढ़ करके करते हैं, कुछ लोग डर से भगवान के शरण में जाते हैं। अहम ही हम नंदम वंदे यस्यालिंग परम ब्रह्म, मैं तो नंद बाबा के उस आंगन को प्रणाम करता हूं जिस आंगन में परब्रह्म भगवान क्रीड़ा करते हैं। यस्याम लिंगम परम ब्रह्म, इसमें आनंद उठाते हैं परम ब्रह्म। आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिल, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कैल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है थोड़ा और आगे कुछ बताइए। तो कहते हैं अब मैं क्या कहूं, अब मेरे लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी बात को रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रुयत पलाकल्प किमिहं वयं साम्प्रतं विचुन्नम् आहृत्य पुरैव नयना अविराम भी परम ब्रह्म। जिस प्रकार से धान, कहते हैं कि धान को कूटा जाता है तो उसमें से चावल निकलता है, तो चावल जो है वो तो गोपियों ने ले लिया है। कृष्ण भक्ति रूपी धान को कूटने से जो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है वह चावल गोपियों ने ले लिया है। अब बचा हुआ है भूसा, तो भूसा को कूटने से क्या फायदा। तब कहते हैं रघुपति उपाध्याय कि आप पूछना ही चाहते हैं तो भूसा को तो मैं नहीं कूटूंगा, यानी संसार के विषय में नहीं बताऊंगा और अन्य विषय में नहीं बताऊंगा, अब उस चावल के विषय में। कहते हैं कम प्रति कथा युतमी से संप्रति को वापरतीत माया तू गोपति तनया कुंजे गोप बटु विटम ब्रह्मा। कहते मैं कैसे इस बात को कहूं, मुझे विश्वास नहीं होता है, मैं इस रहस्य की बात को किसी के प्रति कहने में समर्थ भी नहीं हूं, और भक्ति के अनुराग से रहित ऐसा कौन है जो मेरे इस बात पर विश्वास करेगा। मैं तो कहता हूं कि निखिल श्रुति सार प्रतिपाद परम ब्रह्म श्री जमुना तीर तिरस्त गोप निकुंज में गोप बटु श्री राधिका के समीप सदैव विराजमान रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं कैसे कम प्रति कथई तुमी से, कम प्रति किसके प्रति मैं जाकर इस बात को कहूं, सम प्रति को वा प्रति प्रतीति इमायतु, यदि मैं कभी दूंगा तो मेरे बात पर कौन विश्वास करेगा। बात क्या है, गोपति गोपति तनया कुंजे, गोपति मतलब सूरज और तनया मतलब पुत्री यानी जमुना के किनारे, कुंज में गोप बटु भी विटम ब्रह्म, ओ ब्रह्म जिनको धान कूट करके निकाला गया, ओ ब्रह्म जिन ब्रह्म के लिए जोगी लोग ज्ञानी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वे जमुना किनारे गोपियों के साथ में लीला कर रहे हैं। ये बात कौन विश्वास करेगा, इस बात को कौन मानेगा, और मानेगा तो विश्वास कैसे करेगा। इस प्रकार से लोगों में वार्ता हो रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु इतना सुनकर के उनमें असात्विक विकार आया, तब रघुपति उपाध्याय समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान है। तो भगवान पुनः पूछे, प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकाय श्यामैव परम रूप कहे उपाध्याय, कहे कि हे उपाध्याय आपकी दृष्टि सबसे श्रेष्ठ क्या है संसार में। कहते हैं श्याम सुंदर का स्वरूप राधा रास विहारी का स्वरूप जो है वह है सर्वश्रेष्ठ। श्याम स्वरूप वास स्थान श्रेष्ठ मानकाय, कहते हैं श्याम सुंदर का निवास स्थान है, उन निवास स्थानों में श्रेष्ठ स्थान किसको मानते हैं। कहते हैं पूरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय, कहते मैं मथुरा मंडल को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, वृंदावन को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। अब कहते हैं कि भगवान के जो रूप हैं, बालपौ गंड कैशोर्य श्रेष्ठ मानकाय वयम वयम कैशोर कम ध्यायम कहे उपाध्याय। भगवान के ये तीन रूप हैं, तीन स्वरूप हैं, बाल्य स्वरूप, पौगंड एक से पांच, पांच से दस और दस से पंद्रह किशोर, इसमें से श्रेष्ठ किसको मानते हैं? तो कहते हैं वयम कैशोर कम ध्यायम, जो किशोरावस्था है जब रास डांस भगवान किए थे, यानी रास बिहारी का जो रूप था उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं। रस गण मदे तुम्हें श्रेष्ठ मानकाय, जितने भी रस हैं शांत दास्य साक्य वात्सल्य और माधुर्य, उसमें से श्रेष्ठ कौन कहते हैं? आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय, आद्य रस आदि रस यानी माधुर्य रस को कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूं, कंजुगल लव को श्रेष्ठ मानता हूं। सामेव परम रूपम पुरी मधुपुरी बरा वयम कैशोर कम ध्यायम आद्य एव परो रस। तो मैं इसलिए ये पढ़ा, जो कि बड़ा अच्छा चीज है, कि भगवान भक्तों को ध्यान का विषय रखना चाहिए कि श्यामेव परम रूप, भगवान के अनंत रूप हैं, उन रूपों में से सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो श्याम सुंदर का रूप है। भगवान के अनेक निवास स्थान हैं, उसमें से जो पुरी, जगन्नाथपुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, ये जो पुरी है ये श्रेष्ठ स्थान है। भगवान के जितने वयस्क हैं यानी बाल, पौगंड और किशोर, इसमें से जो किशोर अवस्था है जब भगवान रास डांस किए थे वो अवस्था श्रेष्ठ है। तो और पांचों रस में से जो कंजुगल लव या माधुर्य रस जो है, आदि रस जिसे कहते हैं, वह श्रेष्ठ शब्द है। तो मैं कहता कि महाभागवत को इसी में आनंद आता है। महाभागवत लोग केवल हरि कथा कहने और सुनने में लगे रहते हैं। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति स्त्रियों के संबंध में या स्त्री पुरुष के संबंध में बात करे उसमें आनंद आता है, वैसे ही महाभागवतों का मन जो है वो सदैव कृष्ण के विषय में कहने और सुनने में लगा रहता है। तो प्रहलाद महाराज का मन संसार के वस्तुओं में, बालक थे लेकिन क्रीड़ा में उनका मन नहीं था, क्योंकि उनका मन कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया था, यानी वे माँ के गर्भ से ही कृष्ण भावना भावित हो गए थे। हम लोग माँ के गर्भ से नहीं हुए, गुरु के कृपा से, वैष्णव कृपा से कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। तो अब कृष्ण भावना भावित हो गए हैं तो अब हम लोगों को वही करना चाहिए जैसा कि प्रहलाद महाराज ने हम लोगों को शिक्षा दिया है, अपना साधना भक्ति अच्छा तरह से करें, ऐसा करें कि कृष्ण हमको ग्रहित कर लें, कृष्ण हमको पकड़ लें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? माइक विष्णु।
ये जो लास्ट बात, जो लास्ट बात आपने बताई कि कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा धाम सर्वश्रेष्ठ है, तो उस पर थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें तो कृष्ण एब्सोल्यूट है। तो वेदर बाल्य अवस्था है या पौगंड अवस्था है, वो तो एब्सोल्यूट कृष्ण है, तो उसमें क्यों वो ऐसा बोलते हैं कि किशोर अवस्था? हम ऐसा मानते हैं कि जहां भी कृष्ण हो वहां वृंदावन होता है, तो वो क्यों ऐसा मानते हैं कि वही?
आपका कथन बिल्कुल सही है, कृष्ण एब्सोल्यूट हैं, सब प्रकार से ट्रांसेंडेंटल हैं। जब पुतना को वध किए थे तो भी ट्रांसेंडेंटल थे, माखन चोरी किए तभी ट्रांसेंडेंटल थे, सब जगह और ट्रांसेंडेंटल हैं, लेकिन फिर भी भगवान के जो अन्य लीलाएं हैं उन लीलाओं में भी तारतम्य है, श्रेष्ठता है. जैसे ये पांच रस है, शांत रस. जिन भक्तों का भगवान से संबंध शांत रस में, जैसे वृंदावन की गौवे हैं, उनका संबंध भगवान शांत रस में है. इसका मतलब ये नहीं कि अब्सोल्यूट नहीं हो, अब्सोल्यूट ही है. वैसे ही दास्य जो दास भाव में है उनका भी अब्सोल्यूट है, जो साख हैं उसमें भी अब्सोल्यूट है, जो वात्सल्य हैं नंद यशोदा वो भी अब्सोल्यूट हैं, लेकिन जो माधुर्य भाव है वह सर्वश्रेष्ठ है, जो कि ब्रज में रहता है. परोकिया भावेते ब्रजेत प्रचार, पूरे ब्रज में परोकिया भाव जो है ब्रज में है. इसीलिए ब्रजवासियों को गोप और गोपी कहा गया है. बॉम्बे वासियों को गोपी नहीं कह सकते हैं, कहते हैं कोई समझेगा भी नहीं. कलकत्ता वासियों को गोपी नहीं कह सकते हैं. गोपी, गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पिबती. जो नित्य निरंतर अपने इंद्रियों से कृष्ण ग्रास किस रसायन का पान करे वो कहलाता है गोपी या गोप. तो ब्रजवासी लोग ये करते हैं. तो अब्सोल्यूट है, जैसे मिडिल स्कूल का पढ़ाई अब्सोल्यूट है, हाई स्कूल का पढ़ाई अब्सोल्यूट है, कॉलेज का पढ़ाई अब्सोल्यूट, अब डिग्री प्राप्त करने का सब अब्सोल्यूट है अपने अपने स्तर पर, लेकिन फिर भी तारतम्य है. जो एक पीएचडी डिग्री को एमटेक बीटेक करने का पढ़ाई कर रहा है और कोई एबीसीडी पढ़ रहा है, अपने लिए अब्सोल्यूट है लेकिन हाईएस्ट वो है. तो तुलना इस रूप में की गई, अब्सोल्यूटली की तुलना में नहीं की, अब्सोल्यूट है. चीनी का लड्डू कैसे भी खाओ मिठाई है, लेकिन फिर भी रसगुल्ला अलग है, गुलाब जामुन अलग है, लड्डू अलग है. तो वैसे ही भगवान का जो यह माधुर्य भाव का जो प्रेम है आदि रस, वो सर्वश्रेष्ठ रस है. ये भक्त के भक्ति पर डिपेंड करता है. जैसे कोई दास्य भाव में रहता है तो उसे वो अच्छा लगता है, वो लेडर क्लाइम नहीं करना चाहता है, ही कंटेंट, कोई अब्सोल्यूट है. जो शांत भाव में है वो कंटेंट है. सभी भावों में एक चीज है, वो है सेवा करना. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सेवा करना, जीवर स्वरूप है कृष्ण दास, उसमें परिवर्तन नहीं होता है. और सेवा के चलते ही कृष्ण अब्सोल्यूट है और कृष्ण से हमारा संबंध अब्सोल्यूट है. कहते ना मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर. वो सेवा से, वो मान्यता से, मान्यता में सेवा से. तो जो दास भाव में सेवा कर रहा है भगवान का स्नेह उसे उसी भाव में मिल रहा है, तो वो अब्सोल्यूट है. जो दास जो शांत में वो भी सेवा करता है, जो दास में है वो भी सेवा करता है, जो साख्य में है वो भी सेवा करता है, जो वात्सल्य में है वो भी सेवा करता है, और जो माधुर्य में है वो भी सेवा करता है. अंततः यही करना है कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो. शुद्ध भक्त यही है. अन्याभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मान अनावृत. कृष्ण अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा. कृष्ण प्रसन्न हो, बस. कृष्ण की प्रसन्नता ही सर्वश्रेष्ठ है. तो कृष्ण के प्रसन्नता के रूप में देखा जाए तो कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं माधुर्य भाव में. एनी अदर क्वेश्चन? कीप इट ऑन ओनली.
गौरंग महाप्रभु को जो पूरी में जो लास्ट उनका जो अवस्था था उसके बारे में जरा बताइएगा.
उसके लिए बहुत समय लगेगा और प्रश्न वही करना चाहिए जो कि प्रवचन में कहा गया है, नहीं तो एक नया प्रसंग शुरू हो जाएगा. जो अब तक मैं कहा हूं एक घंटा के अंदर, उसमें जो कोई संदेह हो तो पूछना चाहिए.
हरे कृष्णा. ये हमारे जो पांच रस है भगवान के साथ जुड़ना, तो सभी अपने आप सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सब वही ठीक है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए कोई कौन कर सकता है?
आप खाते हो तो मेजरमेंट करते हो कितना पेट भरा है,
वही तो पता चलता है. लेकिन
हाँ, तो वैसे ही साधना भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, जो आपका स्वरूप होगा अपने आप बाहर आएगा, उत्कृष्ट निकल करके बाहर आएगा. आप शांत में हो, दास में हो, सख में हो, अतल में, उसके लिए कोई आर्टिफिशियली ट्राई करने की जरूरत नहीं है.
मैं कहा इनके प्रश्न के उत्तर में कि भक्त लोग कंटेंट रहते हैं, हनुमान जी कभी नहीं सोचेंगे मैं गोपी बन जाऊं, डंडा मारेंगे हनुमान जी, कभी नहीं सोचेंगे ऐसा कि मैं गोपी बन जाऊं। अर्जुन को अच्छा है उसी भाव में, यशोदा मैया को अच्छा है उसी भाव में। तो हम लोगों का भगवान से क्या संबंध है जब मुक्ति होगी तब, अभी तो शरीर से ही मुक्ति नहीं हुई है, संसारिक विषय वस्तुओं से ही मुक्ति नहीं हुई है, स्वरूप पर स्थित होना बहुत दूर है। हम प्रयास कर रहे हैं, साधना भक्ति प्रयास करने का तरीका है। तो इसलिए मैं जोर देता हूं और मैं कहता हूं कि आप लोग आओ, सब लोग मंगला आरती क्लास गुरु पूजा, ये तपाओ, जैसे लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है, तो एक तो रगड़ रगड़ करके सफाई करो और एक आग में डाल दो, कुछ समय के बाद जब लाल हो जाएगा तुम करो सब निकल जाएगा। तो ये साधना भक्ति आग में डालने के समान है, आकर खूब नाचो, जितना पसीना निकलेगा उतना गंदगी निकलेगा, ये समझ लो, नाचने से जितना पसीना निकलेगा गंदगी निकलेगा, शरीर का भी गंदगी और आत्मा पर छा गया है जिसे आत्मा जीव हो गया वो भी गंदगी निकलेगा। साधना भक्ति कोई ऑर्डिनरी नहीं है। रूप गोस्वामी जिसका वर्णन कर किए हैं प्रथम प्रवाह में ही भक्ति स्वामी सिंधु के साधना भक्ति का, ये साधना भक्ति लैडर है, लक्ष्य पर जाने के लिए सीढ़ी का जो सीढ़ी है, तो सीढ़ी के पग पर चढ़ना पड़ेगा। तो ये मंगला आरती क्लास गुरु पूजा संध्या आरती भागवत प्रवचन ये सब सीढ़ी के डंडे हैं। कहाँ जा रहा है मैं जानता हूं, तू कहाँ जाएगा? और कोई प्रश्न? इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने आप होगा। माइक 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 जानता हूं हनुमान जी और हरिदास।
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि भक्त व्यासासन में बैठे के अच्छा प्रवचन देते।
आप बोल रहे हो कि पूछ रहे हो?
व्यासासन में बैठे
नहीं, आपको बोलना था यहाँ आकर बोलो।
मैं बोल रहा हूँ और पूछेगा फिर?
पूछ रहे हो।
हाँ, व्यासासन में बैठे के अच्छा प्रवचन देते, अच्छा बातचीत करते, जो सुनते बाहर लोग जो सुनते अच्छा है अच्छा है, लेकिन फिर जब व्यासासन में नीचे आ जाते और जो रूम में जाते तो सब भूल जाते और कपटता आ जाते, जो कपट ना जो जो जैसा शंकुन जैसा कपट का ये ज्यादा है, ये हमारा भक्त का अंदर है, ये कैसा जाएगा? ये
तो ये बतलाओ कि आप परमात्मा कब से बन गए, किसके दिल में क्या है, आप कब से जानना शुरू किए? ये तो परमात्मा का काम है ना देखना कि कौन कपटी है कौन भक्त है। हम लोगों का काम है देखना सब में भक्ति, अच्छा बनना है सब में अच्छाई देखो, बुरा बनना है सब में बुराई देखो, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। कौन अच्छा है कौन बुरा है टेस्टर नहीं है तुम्हारे पास नापने का, तो ये बंद करो, ये बंद करो, ये भक्ति में बाधक होगा साधक नहीं होगा। भक्ति में साधक कुछ वो कहते हैं ना कभी कभी उदाहरण देते हैं कि वो ग्लास हाफ है तो कुछ अरे आधा ग्लास पानी है ठीक नहीं है, कुछ अरे आधा ग्लास पानी आधा ग्लास हवा है। परसेप्शन तुम्हारा क्या है, देखने का दृष्टि क्या तुम्हारा है, तो हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव रहोगे तो हमेशा डिस्टर्ब रहोगे, पॉजिटिव रहोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। संसार में कोई आपको हां नहीं कर सब ना ही कहेगा, याद रखो, दूर वाले तो ना कहेंगे ही, आपका देह भी आपकी इंद्रियां भी एक दिन ना कहना शुरू करेगी, आंख देखना बंद कर देगा, लगा अब दिखाई नहीं पड़ता चश्मा लगाओ, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा वो भी ना कर देगा, पेट में पे टाइट नहीं रह जाएगा वो भी ना कह देगा, पैर में शक्ति नहीं रहेगी जंप करने के लिए वो भी ना कह देगा,
जिस शरीर को जीवन भर पालन किए हो ना, वो शरीर भी ना कह देगा एक दिन, कहिए रहा है डे बाय डे, ना कह रहा है। इसलिए अच्छा रहो, पॉजिटिव रहोगे तो यदि वो ना भी कहेगा ना तो उत्साह रहेगा। पॉजिटिव रहने से उत्साह बढ़ता है और भक्ति बढ़ाने का तरीका उत्साह निश्चया धौर्या तत्त कर्म प्रवर्तना असंगत आगो षडो वृद्धि षडभी भक्ति प्रसिद्धति। उत्साह उत्पन्न होता है जब पॉजिटिव रहोगे तब। पॉजिटिव रहोगे नहीं मंगल आरती जाना ही है, कितना भी बुखार है मंगल आरती जाना ही है, पॉजिटिव रहोगे आ जाओगे। नेगेटिव रहोगे अरे जाऊंगा तो फिर हो जाएगा, फिर और ज्यादा बुखार है तब, और हो जाएगा तब, और हो जाएगा तब, और हो जाएगा तब, ब्रूम सो जाओ। पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत बनो। यस हनुमान जी।
प्रभु जी हरे कृष्ण।
हाँ बोलो
प्रभु जी। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश?
हैं
इंग्लिश?
हाँ नो प्रॉब्लम।
Prabhu ji, would you tell something about Krishna Graha Grihita Atma? Here it is mentioned here Krishna Graha Grihita Atma. So would you tell something?
Pura Ramayan ho gaya, Sita ji ka vivah hi nahi hua. Wahi baat kar, pata nahi kahan par tha. Main bata diya ki Krishna Graha Grihita Atma. Mota moti abhran shabd mein Krishna rupi graha se ग्रसित आत्मा थे प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के आत्मा को कौन पकड़ लिया था? एक ग्रह पकड़ लिया था, उस ग्रह का नाम था कृष्ण ग्रह। जैसे शनि ग्रह हो जाता है, किसी को अमेरिका ग्रह हो जाता है, ना अमेरिका ग्रह ना, अमेरिका जाने का धुन लग जाता है उसको, तो ग्रह पकड़ लेता है अमेरिका जाने का। तब तो वह हो गया अमेरिका ग्रह गृहीता आत्मा, अमेरिका के एक ग्रह से वो ग्रसित आत्मा हो गया है। तो
हरे कृष्ण। सो देयर आर सो मेनी ग्रहस, जनरली वी नो देयर आर 9 ग्रहस आर देयर,
सो बेटर यू बी कॉट बाय कृष्ण, कृष्ण ग्रह, दैट इज बेटर, नॉट बाय शनि ग्रह और राहु और केतु। जब राहु केतु से ग्रसित रहोगे तो प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, और कृष्ण ग्रह से ग्रसित रहोगे तो प्रोग्रेस कर सकते हो।
दैट इज माय क्वेश्चन ब्रो जी, हाउ इज दैट कृष्ण ग्रह?
तो आया करो प्रोग्राम में, मंगला आरती क्लास, गुरु पूजा, सोलह माला जप करो, वैष्णव में निंदा मत करो, देखो मत, शास्त्र का अध्ययन करो, केवल कृष्ण का प्रसाद खाओ और कोई चिंता मत करो, हो जाएगा फटाक, एक दिन में हो जाएगा, एक सेकंड में हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी शांति कैसे मिलेगी? अरे पूछो तुम शांत होना चाहते हो? पहले शांति का भूख होगा तब शांति मिलेगी, सुखी मैं कैसे होऊंगा? क्योंकि हम सुखी होना नहीं चाहते हैं। यदि सुखी होना चाहते जल्दी सो जाओ, सुखी होना चाहते भगवान का मंगला आरती में आओ, सोएंगे 2 बजे, खाएंगे कभी भी, तकलीफ होगा ही, तब कैसे सुखी हो गया? हम स्वयं शत्रु हैं अपने आप, अपना शत्रु हम स्वयं हैं। तो यदि हम कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा बनना चाहते हैं तो हम बन सकते हैं, कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज कृष्ण के द्वारा अनुग्रहित थे, इनका अनुग्रह था, और अनुग्रह मतलब कृपा, और कृपा कब होता है? मैं श्लोक बताया, जैसा प्रसाद भगवत प्रसाद हो, जब गुरु कृपा होती है। प्रभुपाद जी कब खुश होंगे? जब देखेंगे कि हम लोग उनके आदेशों का यथावत पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी खुश हैं, कृष्ण खुश हैं, और कृष्ण खुश हैं तो कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा हो गए हम लोग। एनी अदर क्वेश्चन? माइक 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 इधर, इनको बाद में लास्ट में हनुमान जी, बस सबको भूख लग गया है, सब लोग क्या क्षुधा गृह गृहित आत्मा हो गए हैं अभी,
है ना? प्रभु जी मेरा प्रश्न बाहर का है तो मैं कर सकता हूँ? इस टॉपिक से अलग है, कुंभ से जुड़ा हुआ है मेरा प्रश्न है।
आपको डिस्टर्ब कर रहा है?
नहीं डिस्टर्ब थोड़ा मुझे मतलब मेरे मन को मतलब ये
ठीक है बोलो चलो पूछो
तो प्रभु जी ऐसा है कि जैसा हमने सुना कि अमृत बांध करके सारे देवता लोग ये हो गए मतलब
अमर हो गए
तो जैसा कि भगवत गीता में वर्णन है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया सहस्त्र युग पर्यंतम अहम यद ब्रह्मण विदु रात्रि युग सहस्त्रानाम तेहो रात्रि विदो जना तो उसका अर्थ की मानवीय गणना के अनुसार 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो मेरा है कि जब अमर हो गए तो ये उनकी मृत्यु फिर कहां से आती है।
चींटी के लिए आप अमर हो मच्छर के लिए आप अमर हो, अमर का कहने का अर्थ समझना चाहिए। ये चींटी है उसका जीवन काल बड़ा कम है
लेकिन मृत्यु तो निश्चित है ना प्रभु जी,
मरना तो सबको है
तो फिर अमरता का यहाँ पे प्रश्न कहां से उठता
है? वो गणना में तुलात्मक हमारा जीवन का और उनका जीवन का
अंतर बड़ा हो गया ऐसा।
हाँ चींटी का जीवन और आपका जीवन, तो चींटी के लिए आप अमर हो तो देवताओं को अमर कहा गया है, वो अमर हैं क्योंकि उनका जीवन अवधि बहुत ज्यादा है उस भाव में। यस हनुमान जी क्वेश्चन नो परपट ऑल राइट ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय।